उत्सव है क्रांति का, पर्व है संघर्ष का, गीत है विद्रोह का, संगीत है विप्लव का। चिर शत्रु भीतर है विराजित, वासनामय चेतना प्रत्युष्ट विवेक, क्षिणकाय आत्मबल बोझ स्मृति, जागरण की खिंची है तलवारें, सज उठा है लश्कर, रण चंडी रक्त की प्यासी खड़ी, मुक्ति मुक्ति पुकारती खड़ी, विजयी हो तुम वीर हो, निरामय विकार हो। उत्सव है क्रांति का, पर्व है संघर्ष का, गीत है विद्रोह का, संगीत है विप्लव का।
एक अत्यंत धार्मिक पिता जिसने अपने बेटे को बचपन से ही धर्म की सारी शिक्षाएं दी थी, एक दिन चर्च मिले जा रहे होते हैं। बचपन से ही उस छोटे बच्चे को बाइबल की बातें उस पिता ने सिखाई होती है, और आज जब चर्च लेके जा रहे होते हैं, चर्च में कोई एक बड़ा उत्सव है और वो अपने बेटे को सिखाते हैं कि जो एक सच्चा ईसाई होता है, क्रिश्चियन होता है, वो डोनर होता है, तो मैं तुम्हें दो चीजें दूंगा। अब देखना यह है इन दो चीजों में से तुम कौन सी चीज का दान करोगे। एक तो 5 रुपए की एक नोट और दूसरी 100 रुपए की एक नोट। A great Christian is a great donor. तो मुझे देखना है कि आज तुम्हारी परीक्षा है, तुम क्या देते हो। एक तो 5 रुपए की नोट है और एक 100 रुपए की नोट है। वो छोटा सा बच्चा अंदर जाता है, पादरी का प्रवचन होता है वगैरह वगैरह। पिता अत्यंत धार्मिक है, डीपली रिलीजियस, और जब वो बेटा बाहर आता है तो पिता पूछते हैं, तुमने दान में क्या दिया? बेटा कहता है 5 रुपए की नोट। पिताजी को बहुत दुख होता है। पिताजी पूछते क्यों? वो बेटा कहता है कि जो पादरी का प्रवचन चला था उसमें पादरी ने कहा था, फादर ने कहा, गॉड लवेथ अ चीयरफुल डोनर, भगवान को वो पसंद है जो खुशी खुशी देते, और मुझे 100 रुपए देने में बहुत दुख हो रहा था। गॉड लवेथ चीयरफुल डोनर, 5 रुपए देने में मुझे इतना दुख नहीं हो रहा था और मैं चीयरफुल था, इसलिए मैंने 5 रुपए दिए। धर्म अर्थात जबरदस्ती नहीं, पुरुषार्थ अर्थात वो नहीं करना जो हमें दुखी करे, पुरुषार्थ अर्थात रिलैक्स्ड, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कोई भी चीज का, जो भी करो पुरुषार्थ में उसमें चीयरफुलनेस हो, खुशी हो। अगर 5 रुपए देने में ही खुशी होती है तो 5 रुपए ही दो, फिर 100 रुपए देकर और दुखी होकर कुछ अर्थ नहीं है। पर जो भी दो वो फिर लगन से दो, चीयरफुली दो, तो पुरुषार्थ करते समय ये कहानी याद रखना, 5 रुपए देने हैं या 500 रुपए देने हैं। मुरली अध्ययन आज एक नए स्वमान की रचना कर रहे हैं। ये जो मुरली है ये भी एक गेम है, ये भी एक खेल है, ये भी एक स्पोर्ट है। 4 नए स्वमान है। आई एम अ मुरली एथलीट। मैं कौन हूं? मुरली एथलीट, खिलाड़ी हूं। ये पहला स्वमान, आई एम अ मुरली एथलीट। दूसरा, आई एम अ मुरली चैंपियन। कौन हूं मैं? मुरली चैंपियन हूं। कौन हूं मैं? मुरली एथलीट। मुरली स्पोर्ट्स इज माय पैशन। मुरली क्या है? स्पोर्ट है, गेम है, और वो मेरे लिए क्या है? पैशन है। पैशन अर्थात जुनून, रग रग में भरा है मेरा। मुरली स्पोर्ट्स इज माय पैशन। तो पहला स्वमान, आई एम अ मुरली एथलीट, मुरली एथलीट से हम, आई एम अ मुरली चैंपियन। केवल एथलीट नहीं, एथलीट में भी वन चैंपियन, एंड मुरली स्पोर्ट्स इज माय पैशन। नशा है मेरा, जुनून है मेरा, जिद है मेरी, जीत के रहूंगा। चौथा, आई विल डेफिनेटली टॉप स्पिरिचुअल मुरली चैंपियनशिप। स्पिरिचुअल मुरली चैंपियनशिप, ओलंपिक्स होते हैं ना, उसमें खिलाड़ी होते हैं, उनको नशा होता है, तैयारी होती है, इंटेंस ट्रेनिंग होती है, भयंकर वाली ट्रेनिंग, 6-6 घंटा 8-8 घंटा ट्रेनिंग करते हैं, पसीना पसीना कर देते हैं खुद को, शरीर को कैसे मजबूत बना देते हैं। आई विल डेफिनेटली टॉप, क्या टॉप करूंगा? स्पिरिचुअल मेमोरी चैंपियनशिप, स्पिरिचुअल मुरली चैंपियनशिप। पहला, आई एम अ मुरली एथलीट, खिलाड़ी हूं मैं, आई एम अ मुरली चैंपियन, मुरली स्पोर्ट्स इज माय पैशन। मुरली स्पोर्ट्स है, खेल है, गेम है, और वो कैसा है मेरे लिए? एक इंटॉक्सिकेशन है, एक नशा है, एक पैशन है, एक जुनून है, एन ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन मतलब, ऑब्सेशन अर्थात, ऑब्सेशन मतलब, ऑब्सेशन का अर्थ क्या है? ऑब्सेशन कंप्लीट कैप्चर ऑफ द माइंड बाय वन आइडिया, दिन रात बस उसी का ही चिंतन, ऑब्सेस्ड हो गया है व्यक्ति, पूरा उसके रग रग में भर गया है, ऑब्सेस्ड, कंपल्शन हो गया है उसके लिए. ऑब्सेशन विचारों में, कंपल्शन एक्शन में, करना ही है उसको. आई विल डेफिनेटली टॉप स्पिरिचुअल मुरली चैंपियनशिप. तो मुरली चैंपियनशिप की कंपटीशन होने वाली है. एक एक एग्जाम जो यहां होगी वो क्या होगी? मुरली चैंपियनशिप. मुरली चैंपियन बनना है. सो आई एम मुरली एथलीट्स, आई एम मुरली चैंपियन. मुरली स्पोर्ट्स इज माय पैशन. चीयरफुल. अगर 100 रुपए भी दो तो कैसे हो फिर? 500 रुपए भी दो वो चीयरफुल. तो ये आज के नए 4 समान. यदि रक्त बूंद भर भी होगा कहीं बदन में, नस एक भी फड़कती होगी समस्त तन में, यदि एक भी रहेगी बाकी तरंग मन में, हर एक सांस पर हम आगे बढ़े चलेंगे, वह लक्ष्य सामने है पीछे नहीं हटेंगे. मंजिल बहुत बड़ी है पर शाम ढल रही है, सरिता मुसीबतों की आग उबल रही है, तूफान उठ रहा है, प्रलयाग्नि जल रही है, हम प्राण होम देंगे हंसते हुए जलेंगे, हंसते हुए. आई एम अ चीयरफुल डोनर. पीछे नहीं टलेंगे, आगे बढ़े चलेंगे. अचरज नहीं कि साथी भाग जाए छोड़ भय में, घबराए क्यों, खड़े हैं भगवान जो हृदय में. धुन ध्यान में धसी है, विश्वास है विजय में, बस और चाहिए क्या, दम एकदम ना लेंगे, जब तक पहुंच ना लेंगे आगे बढ़े चलेंगे. राम नरेश त्रिपाठी की ये कविता है. तो ये कविता हमारी कविता है. किसकी? मुरली एथलीट की. किसकी? मुरली चैंपियन की. आई एम मुरली एथलीट, सभी बोलेंगे. आई एम मुरली चैंपियन. मुरली स्पोर्ट्स इज माय पैशन. आई विल डेफिनेटली विन. स्पिरिचुअल विन. आई विल डेफिनेटली टॉप स्पिरिचुअल मुरली चैंपियनशिप. तो ये नए समान है आज की. हम कौन है? मुरली के खिलाड़ी. खिलाड़ी है खिलाड़ी. और अभी सबकी ट्रेनिंग चालू है ओलंपिक्स की, भयंकर वाली कमांडो ट्रेनिंग. जब तक पहुंच ना जाए आगे बढ़े चलेंगे, पीछे नहीं टलेंगे आगे बढ़े चलेंगे, वह लक्ष्य सामने है पीछे नहीं टलेंगे, तूफान उठ रहा है प्रलयाग्नि जल रही है, सरिता मुसीबतों की आग उबल रही है, मंजिल बहुत बड़ी है पर शाम ढल रही है, हम प्राण होम देंगे हंसते हुए जलेंगे, घबराए क्यों, खड़े है भगवान जो हृदय में, धुन ध्यान में धसी, विश्वास है विजय में, बस और चाहिए क्या, दम एकदम ना लेंगे, यदि एक भी रहेगी बाकी तरंग तन में मन में, हर एक सांस पर हम आगे बढ़े चलेंगे, यदि रक्त बूंद भर भी होगी कहीं बदन में, नस एक भी फड़कती होगी समस्त तन में. तो ट्रेनिंग के लिए सभी तैयार है ना? ट्रेनिंग चालू है. और ट्रेनिंग में छोटी मोटी चोटें तो लगनी ही चाहिए. खिलाड़ी जो होता है ना, 2400 घंटे उसके शरीर में दर्द होता है, दर्द. अगर आज इस हाथ में दर्द हो रहा है तो दूसरे दिन जाके रेस्ट नहीं लेता है, रेस्ट नहीं लेता है. इतना एक्सरसाइज करता है कि पूरे शरीर में दर्द होने लगता है. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेन. अब यहां दर्द हो रहा था ना, अब पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, तो यहां का कम हो गया. अब यह है विधि. लोग एक्सरसाइज करना चालू करते हैं और पहले दिन इतना थक जाते हैं, कहते हैं बस ये तो बहुत दर्द हो रहा है पैरों में, आज इतना पुशअप कर लिया, स्क्वैट कर लिया, पुलअप कर लिया, लंजेस कर लिए, इतना सारा कर लिया, इतना दर्द हो रहा है, दो दिन रेस्ट। रेस्ट नहीं, उसकी विधि क्या है, करते रहो एक्सरसाइज, रुकना नहीं। पैर में दर्द हो रहा है एक पैर में, अब ज्यादा एक्सरसाइज करो ताकि दोनों पैर में दर्द हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेन कहा जाता है इसे। इधर छाती में दर्द हो रहा है ना, पूरा पुशअप, बहुत पुशअप कर लिए, 100-200 पुलअप कर लिए, चेस्ट का एक्सरसाइज की बहुत ज्यादा, इधर दर्द हो रहा है ना, अब दूसरे दिन बैक करो, कोर करो, आर्म्स करो, लेग्स करो, तो पेन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट। तो डिस्कम्फर्ट से प्रेम करना है, किससे, और कंफर्ट एडिक्शन है उससे मुक्त होना है। तो ये आज के नए सामान है चारों, इस पर काम करना है। अपने आप को स्पोर्ट्समैन समझो, और इसमें हार जीत होती रहती है। दुखी होते हैं क्या स्पोर्ट्समैन? दुखी नहीं होते, हार गए तो फिर खड़े हो जाओ, फिर चालू। और स्पोर्ट्समैन जो होता है ना, वो सीखते ही रहता है। सचिन तेंदुलकर कहते हैं मैं आज भी सीख रहा हूं, सुनील गावस्कर कहते हैं मैं आज भी सीख रहा हूं, वो सीख ही रहे हैं और नई नई विधि से सीख रहे हैं। वो वीडियो आया था ना सचिन तेंदुलकर का, उल्टी बैट लेके खेल रहा है बच्चों के साथ, उल्टी बैट, वो इधर पकड़ के इधर, सीखते ही रहना है नॉन स्टॉप, क्योंकि खेल है ये। मुरली क्या है आज, खेल, स्पोर्ट्स है। मुरली स्पोर्ट्स इज माय पैशन, पैशन है, जुनून है, ऑब्सेशन है, ढेर सारी चीजें उसमें सीखनी है। तो आज हम एक नई टेक्निक से इस अव्यक्त मुरली का अध्ययन करेंगे। होमवर्क नंबर 1, साकार मुरली का अध्ययन सभी को करना है 25 लोकेशंस के साथ, जो सबको पता है, तो आज उसको रिपीट नहीं करेंगे। साकार मुरली जो है उसका 25 मेथड्स, 25 लोकेशन के साथ अध्ययन करना है। महावाक्य, शांति स्तंभ, प्रश्न उत्तर, हिस्ट्री हॉल, धारणा के लिए सार, बाबा का कमरा, धारणा के लिए सार, कुटिया, वरदान, फिर स्लोगन, फिर गीत, फिर मुरली से नए स्वमान निकालने हैं और उन 6 स्थानों पर डालने हैं 13 तक, फिर स्थान, व्यक्ति, हॉस्पिटल में डालना है, ड्रामा डालना है, म्यूजियम में, फिर इंग्लिश शब्द डालने हैं, इंग्लिश शब्द निकालने हैं, कौन कौन से इंग्लिश शब्द है, उन शब्दों को लिखना है। जो इंग्लिश ज़्यादा नहीं जानते वो इंग्लिश शब्दों को निकाल के उनको कई बार लिखना है। पीस पाक में सतयुग की पॉइंट्स डालो, देखो, ढूंढो, आंखें ढूंढे कहाँ कौन सी पॉइंट आती है। कॉलम्स पहले बना के रखो, उठा के पॉइंट्स डालते जाना है। पहले लिख कर, फर्स्ट, कल भी बताया था, फर्स्ट फोकस है एक्यूरेसी पर, स्पीड पर नहीं, स्पीड धीरे धीरे आएगी, पहले एक्यूरेट, इधर से इधर डाल दिया, इधर इधर डाल दिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट, माया जीत बनने वाली जो भी पॉइंट्स है सब वहां डालते जाओ। फिर उसके बाद में नई शब्द, नए शब्द, मुरली में कुछ ना कुछ नया आता ही है। हर व्यक्ति अलग अलग बैकग्राउंड से है, अलग अलग कल्चर से है, अलग अलग देश से है, अलग अलग राष्ट्र से, अलग अलग गांव से है, हमने कुछ ऐसे शब्द सुने ही नहीं है जो उसमें आते हैं, तो कुछ ना कुछ नए शब्द तो आते ही है, जो दूसरों के लिए बहुत ही सामान्य है पर हमारे लिए एकदम नया है, हमने कभी नहीं सुना है वो शब्द, वो उर्दू का शब्द है वो, इसलिए हमारे लिए वो नया है। उसके बाद में फिर पहुंचेंगे मानसरोवर, मानसरोवर में मुहावरे डाल दो, और मुहावरे कई बार डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, आपको ढूंढने पड़ेंगे, काम चिता पर जलना, ये भी मुहावरा हो गया, इस टाइप के मुहावरे मिलेंगे, ऐसा स्पष्ट कोई डायरेक्ट मुहावरा उसमें नहीं होगा, दूध घीती खी की नदिया बहेगी, इस टाइप के मिलेंगे, ठीक है, ज्ञान नदिया बह रही है, इस टाइप के मिलेंगे। तो वो उसके बाद में फिर सेवा की पॉइंट्स डालो, यूरोप में, फिर डालो कौन से गुणों का वर्णन है, डायरेक्ट कभी गुणों का वर्णन नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा, वो डाल दो। शक्तियां देखो पूरी मुरली में किस शक्ति की चर्चा है, फिर शक्ति ढूंढ लिया। फिर उसके बाद में भोजन, कई बार भोजन की चर्चा होगी, कई बार कुछ भी नहीं होगी, अगर होगी तो डायरेक्ट डालो, अगर नहीं होगी तो पूरी मुरली ही क्या है, भोजन। नेक्स्ट, बाबा के कौन कौन से टाइटल्स हैं, टाइटल्स, तो टाइटल्स की लिस्ट एक बना के उसमें डाल देना। कितने हो गए, 25। तो इन 25 लोकेशंस में पूरी मुरली को आज रिवाइज करना है। दूसरा, जो कनेक्टिंग अफॉर्मेशंस है जो कल बताए थे, 5, आई एम अ स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर, मुरली इज माय फ्रेंड, तीसरा आई एम मास्टर मुरलीधर, आई ट्रस्ट माय मेमोरी सपोर्ट्स मी, अपनी मेमोरी पर ट्रस्ट करना है, मैंने एक बार पढ़ लिया ना तो मुझे याद रहेगा। ये 5 अफर्मेशन है, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्टिक महासागर, दक्षिण महासागर, और अव्यक्त वाणी जो है उसको आज हम नए मेथड से रिवाइज करेंगे। आज की अव्यक्त मुरली है, आज का भट्टी का 7वां दिन, पहला चरण आज पूरा हो रहा है, कल से सेशंस चेंज होंगे। तो ये 3 चरणों में इस भट्टी को विभाजित किया है, आज का अंतिम दिन पहले चरण का 7वां। तो आज की अव्यक्त वाणी कौन सी तारीख की है, 2 फरवरी 1970 की, स्पिरिचुअल प्रोजेक्टर। और आज हम एक नए टेक्निक से इस मुरली को रिवाइज करेंगे, माइंड मैपिंग। इस टेक्निक को क्या कहा जाता है, माइंड मैपिंग टेक्निक। जैसे हमने फ्लो चार्ट और शेप चार्ट मेथड देखा लास्ट भट्टी में, उसी तरह ये एक टेक्निक है। जैसे कि इसमें क्या किया जाता है, एक बिंदु ले लिया जाता है, ठीक है, एक पॉइंट, और इस पॉइंट से फिर जो भी टॉपिक है, चाहे साइंस का है, इकोनॉमिक्स का है, हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, कोई भी टॉपिक्स, या घर में बर्थडे पार्टी है वो एक टॉपिक है, या कोई प्रोग्राम करना है सेंटर पर वो एक टॉपिक, कोई भी टॉपिक्स, उसका मैपिंग करते हैं, माइंड मैपिंग। कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का, फाइनेंस का है, एनीथिंग, पिकनिक है, ये भी एक टॉपिक है, इसका माइंड मैपिंग। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक बिंदु बीच में ले लिया जाता है, फॉर एग्जांपल हमारा टॉपिक है बर्थडे, ठीक है, तो इसमें थोड़े से ऐसे गुब्बारे दिखा देते हैं, और फिर मेन टॉपिक बीच में आएगा, और फिर आइडियाज, इधर आइडियाज आएगा, इधर और कुछ आएगा, इधर और कुछ आएगा, उसको डिवाइड करते जाना है। मेन टॉपिक बीच में रहेगा, उसके 5 पार्ट्स है, तो एक इधर जाएगा, एक उधर जाएगा, एक इधर जाएगा, फिर इसके 2 पार्ट्स है, फिर 2 इधर, फिर 3 पार्ट्स है इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, इधर, तो पूरा एक चार्ट बन जाएगा, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये आपको दिखेगा नहीं, पर जस्ट बता रहे, बीच में एक टॉपिक ले लिया है, फिर उसके पूरा ट्री बनाते रहे, बीच में टॉपिक है और उसके पार्टीशंस, फिर जैसे मुरली का कोई भी एक टॉपिक है वो बीच में ले लिया, जैसे नम्रता, फिर नम्रता के लिए कौन से गुणों की आवश्यकता है, फिर 1-2 इधर ये ले लिया, क्वालिटीज 1-2-3, फिर नम्रता से फायदे क्या हो गए, नीचे लिया बेनिफिट्स, फिर बेनिफिट्स में 1-2-3 फायदे क्या क्या हुआ, फिर नम्रता लाने के लिए क्या क्या किया जाए, वगैरह वगैरह। कोई भी टॉपिक लेकर उसको बीच में रखना है और उसका मैप बनाते जाना है, पूरे ब्रांचेस बनाते जाना है, करेक्ट, तो उसकी ब्रांचेस बनती जाएगी, ढेर सारी ब्रांचेस बनेगी, कभी अलग अलग ब्रांचेस बना सकते हो, ऐसे ऐसी, कभी स्ट्रेट ब्रांचेस बना सकते हो, तो कभी इस तरह से बना सकते हो, तो ब्रांचेस बनती जाएगी उसकी। तो टॉपिक, मुख्य टॉपिक बीच में रहेगा और उसकी ब्रांचेस बनती जाएगी, और इसका प्रयोग अव्यक्त वाणियों में करना है, माइंड मैपिंग का, ठीक है। साकार मुरलियों में लोकेशंस, 25 लोकेशंस में साकार मुरली को डाल देना है, और धीरे धीरे अभी हम पढ़ रहे हैं और फिर लोकेशंस में डाल रहे हैं, फिर धीरे धीरे मेंटल लोकेशंस, सुनते सुनते ही बिना कुछ लिखे हमें पता है मुरली में माया की ये पॉइंट्स है, वरदान यहां है। ये तो हमारा अपना है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि वरदान हमने वहां डाल दिया है, इसको हमने वहां डाल दिया है। तो हमारे एक ही बार हमने पढ़ा या एक ही बार केवल अब सुन रहे, सभी सुन रहे, हम भी सुन रहे, परंतु हमारे सुनने के साथ साथ एक इंटेंस मेंटल वर्क चालू है भीतर, जो हम अलग अलग लोकेशंस में डाले जा रहे हैं। और जैसे ही हो गया फिर उसको रिवाइज कर लेना है, मन की आंखों से देख लेना है, उसके चित्र बना लेना है, उसकी स्टोरी बना लेना है, फन बना लेना है, चीयरफुल। आई एम अ चीयरफुल डोनर। पिता को चाहे कितना भी दुख हुआ कि इसने 500 रुपए की नोट क्यों नहीं दी, पर बेटा खुश है 100 रुपए की नोट देखे, क्योंकि पादरी ने क्या कहा था, गॉड लवेथ चीयरफुल डोनर। स्टोरी को याद रखना। तो अभी आस्ट की इस मुरली पर आते हैं। तो इसमें अगर हम इस मुरली को यहां ले ले, अव्यक्त मुरली, ठीक है, यह है बीच का। अगर कोई टॉपिक नहीं है तो सीधा डाल दो अव्यक्त मुरली। अगर पूरी मुरली कभी भी अव्यक्त मुरली किसी एक टॉपिक पर नहीं होती है, भले उसका टाइटल जो दिया होगा प्रोजेक्टर दिया है, पर वो एक ही भाग है उसका, उसमें 6 और पॉइंट्स है जिसका प्रोजेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुरली को कोई हेडिंग देना है इसलिए हेडिंग दी गई है। बाकी भगवान ने ऐसा कहा कि बच्चों आज की मुरली का टॉपिक है ये, और फिर उसके बाद में आज बाप दादा, ऐसा कभी बोला है क्या, मैं आज इस टॉपिक पर मुरली चलाऊंगा, वो तो टॉपिक से परे है, या फिर अनंत टॉपिकों का वो सागर है, कोई एक टॉपिक थोड़ी ना है उसको, उसके पास ही इज अ ओशन ऑफ टॉपिक्स, भगवान का नया नाम। वो कौन है, टॉपिक्स का सागर है, उसकी एक ही मुरली में कितने टॉपिक्स है, वो तो हम एक टॉपिक तो हमारी सुविधा अनुसार, क्योंकि हम साकार वतन में रहते हैं, इधर लोक में रहते हैं ना, तो हमको ये सब करना होता है। आत्मिक पावर की परख, अभी आत्मिक पावर की परख बहुत सारी बातें तो बीच में है, जिसका आत्मिक पावर की परख से ऐसे कोई लेना देना नहीं है, उसमें दूसरे दूसरे टॉपिक्स है, तो टॉपिक्स का सागर है, ज्ञान का सागर है, उसके उसमें और एक शब्द ऐड कर दो, प्रैक्टिकल ज्ञान का सागर है। केवल ज्ञान का सागर नहीं है, कौन से ज्ञान का सागर है, प्रैक्टिकल ज्ञान के का सागर। तो आज की अव्यक्त मुरली, तो इसमें हम अभी माइंड मैपिंग करेंगे। ऊपर 3 एरोज दे दो, पीपी, एचएच, एनएन, फिर नीचे 3, एसएस, लास्ट में एए, वेस्ट, रेस्ट, गेस्ट। तो ये है पूरी मुरली, ठीक है, दिस इज कंप्लीट मुरली। पीपी मतलब प्रोजेक्टर और पिक्चर, मुरली की शुरुआत वहीं से है, प्रोजेक्टर और पिक्चर। वो प्रोजेक्टर का जमाना था, आज तो किसी ने प्रोजेक्टर देखा भी नहीं होगा, वो प्रोजेक्टर लगाते थे, उसमें स्लाइड्स रहती थी और वो सामने दिखता था, अभी तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, उससे भी हाईटेक चीजें है। प्रोजेक्टर और पिक्चर, ये आंखें ही प्रोजेक्टर है, और पिक्चर क्या होगा उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, मुरली को हमने क्या कर दिया, इस तरह से डिवाइड कर लिया, बीच में एक पॉइंट ले लिया और फिर उसकी ब्रांचेस बना ली। अब वो जो है इसका आप पिक्चर भी बना सकते हो, कुछ भी आपको मुरली, मुरली शब्द एब्स्ट्रैक्ट, मुरली तो इसकी इमेज है, तो यहां भी एक मुरली भी बना सकते हो, मुरली का एक डायग्राम, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट है तो उसकी 3 विधियां जो हमने देखी, जैसे प्रेम है, प्रेम का कोई पिक्चर बनता नहीं है, तो हम क्या बनाएंगे, प्रेम अर्थात सबसे पहली विधि है सिंबल, उसका सिंबल क्या है, हार्ट। दूसरी विधि है, अगर सिंबल भी नहीं बन रहा है तो राइम, राइम वर्ड्स, लव डव इस टाइप से, उसका यमक राइमिंग वर्ड्स जो है वो भी नहीं हो रहा है, तो तीसरी विधि क्या है, कट द केक, उसके फिर क्या कर देना है, टुकड़े टुकड़े कर देने हैं। और फिर जैसे सिंपति, ये सिंपति शब्द याद नहीं हो रहा है, सिम का पति, जो सिम कार्ड होता है ना उसका पति, ये हमने अपना मेंटल एक पिक्चर बना लिया तो वर्ड हमको याद रहेगा। तो एच एच दूसरा है, एच एच हेड और हैंडल, ये देखो भगवान भी यही सब कर रहा है, सारी टेक्निक्स उसके पास है, हेड और हैंडल, टेक्निक्स का सागर है वो, हेड और हेड हैंडल और हेड और हैंडल, ये दूसरा। तीसरा निश्चय और नशा, एन एन, निश्चय नशा, हेड हैंडल प्रोजेक्टर पिक्चर। फिर आ जाओ संकल्प और सेकंड, एस एस, और लास्ट में एक्यूरेट और अलर्ट और एक्यूरेट, और बीच में है वेस्ट रेस्ट और गेस्ट। तो ये हमारा मेन पिक्चर हो गया, पहले ये बना लिया हमने बीच, फिर उसके एरोज दे दिए इधर उधर, और फिर हम इसके डेप में जाएंगे, अभी इसके फर्दर एरोज में जाएंगे, ताकि ये पूरी मुरली हमारे एक डायग्राम में पूरी मुरली आ जाए। इतना छोटा छोटा नहीं, बड़ा बड़ा बनाना है, क्योंकि उसको और बड़ा बड़ा पूरा एक पेज ले लेना है उसके लिए, माइंड मैपिंग के लिए। माइंड मैप लोग किसी के लिए भी करते हैं, जैसे कोई बर्थडे सेलिब्रेशन है उसमें भी माइंड मैपिंग करते हैं, जैसे बर्थडे, फिर आइडियाज एक्टिविटीज लोकेशन कहाँ जाना है वो एक एरो, फिर होम में जाना है एल्सवेयर जाना है, ट्रिप करनी है, स्केटिंग करनी है, बोटिंग करनी है, क्या करना है उसमें, फूड क्या होना चाहिए, फूड का एक एरो, इन्विटेशन किस किस को बुलाना है उसका एक, किसको नहीं बुलाना है फिर किस मंथ में करना है उसकी डेट क्या है उसका एक एरो, आइडियाज क्या है, रिंग गोल्ड फ्लैग्स परफ्यूम केक स्ट्रॉबेरी चॉकलेट कुछ भी, फ्रेंड्स फैमिलीज एरोज एरोज एरोज, पूरा एक पिक्चर बना के रख दिया। दिस इज वेरी सिंपल टेक्निक। कोई प्रोग्राम भी करना है तो बीच में डालो प्रोग्राम कब करना है, अच्छा 25 अक्टूबर को करना है, कहाँ करना है उसका वेन्यू, फिर किसको किसको बुलाना है, इन इनको बुलाना है, उसके मेन मेन हेडिंग्स डाल के रखना है, गेस्ट को बुलाना है, इसको बुलाना है, उसको बुलाना है, वो लिख के रख दिया, बस ये चिपका दो। काम किसको किसको देना है, जिन जिन सेवाधारियों को काम देने उनके नाम लिख लो, इसको ये देना है, उसको वो देना है, उसको वो देना है, उसको देना है, एक एक काम उसको उसको देना है, ये माइंड मैपिंग है। सो माइंड मैपिंग हमको मुरली में भी यूज करना है और बाकी जगह सेवाओं में भी यूज करना है, तो बहुत काम आएगा। तो अभी चलते हैं मुरली की तरफ। तो सबसे पहला है पीपी अर्थात प्रोजेक्टर और पिक्चर, दूसरा है एच एच हेड और हैंडल, तीसरा है एन एन नशा और नशाना, एस एस सेकेंड और संकल्प, ए ए अलर्ट और एक्यूरेट, वेस्ट रेस्ट गेस्ट। बाबा राइम शब्द का प्रयोग करता है। अगर वेस्ट से मुक्त होना है तो सबसे पहले अंदर बाहर रेस्ट नहीं करो, रेस्ट करोगे तो माया आएगी। रेस्ट मतलब अलबेलापन, आलस, आज मेरी छुट्टी है, आज क्या है मेरी छुट्टी, सन हैज नो संडे, सन को संडे है क्या, वैसे हमें भी कोई संडे नहीं है, रादर जिस दिन छुट्टी होती वह तो ज्यादा पुरुषार्थ का दिन है वो तो। हाँ हमारा अपना संडे के दिन सबसे ज्यादा काम होता है, बाकी 6 दिन हम हॉलीडे पे रहते हैं, क्योंकि संडे बहुत सारा काम करना है, मेंटल वर्क। तो सबसे पहले आते हैं, अभी चलो यहीं से चालू कर देते हैं, वेस्ट रेस्ट गेस्ट। बाबा कहते हैं कि तुम्हें अगर वर्थ संकल्प से मुक्त होना है तो दो चीजें करो, पहली चीज कौन सी, रेस्ट नहीं लेना, अंदर बाहर रेस्ट नहीं लेना, अपने आप को एक्टिव रखना है, प्रोग्राम बना के रखना, बिजी रखना है, ये करना ये करना ये करना ये करना। कोई ऐसे कैसे बोल सकता है आज मेरी छुट्टी है आज तो मैं आराम करूंगा, आराम कौन सा आराम, कैसा आराम, आई एम अ मेमोरी एथलीट, आई एम अ मेमोरी चैंपियन, मेमोरी इज अ पैशन, मेमोरी स्पोर्ट्स, ये जो है मुरली स्पोर्ट्स इज माई पैशन, इतना सारा पढ़ के हो गया क्या, फन, सुपर फन बनाना है मुरली को, क्या बनाना है, सुपर फन, केवल फन नहीं सुपर फन, मतलब जब बोर होने लगे तो मुरली पढ़ो, ऐसा अवस्था आ जाए। नेक्स्ट, तो हाँ पहला तो रेस्ट नहीं लेना है, नो रेस्ट, रेस्ट को हटा दो, आराम करना ही नहीं है। जब तक मंजिल पर ना पहुंच जाए तब तक रुकना ही नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। फिर है अपने आप को गेस्ट समझो, कल भी था। ऑफिस कर्म क्षेत्र में कौन हूं? मैं मेहमान हूं। बिस्तर पर कौन हूं? परमधाम निवासी हूं। मार्केट में कौन हूं? सितारा हूं सफलता का। ग्राउंड में कौन हूं? शक्तिवान। श्रेष्ठ स्थिति है, श्रेष्ठ कर्म है। एटीएम में कौन हूं? दूसरों को आगे रखने वाला। और ग्राउंड में इसमें कौन हूं? बैंक में स्नेही, एक बाप से प्यार। स्कूल में कौन हूं? माया नहीं, संकल्प में भी माया नहीं। और कॉलेज में क्या हूं? बीती को बिंदी। और रिहैब सेंटर में पावरफुल संकल्प है तो सोच लो मेरा डिपार्टमेंट उधर जा रहा है, किधर? सतयुगी सृष्टि। कमजोर संकल्प है तो त्रेता युग, अगर बहुत ही ज्यादा कमजोर है तो द्वापर, अगर विकार है तो कलयुगी सृष्टि। चार फ्लोर बना दो। और फिर लास्ट में क्या था? पेट्रोल पंप में क्या प्रतिज्ञा है? दृढ़ प्रतिज्ञा। हो गया, ये प्रतिज्ञा याद रहेगी, ये चित्र याद रहेगा, वो मुरली का टेक्स्ट सब भूल जाएगा, पर ये छोटी सी पॉइंट भी हमें माया में गिरने से बचा सकती है। तो वेश से मुक्त होने की विधि, नो रेस्ट, और स्वयं को गेस्ट समझना, मेहमान। फिर एसएस संकल्प, और सेकंड भी तुम्हारा वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्या कहा बाबा ने? कितनी बार आया है ये पॉइंट्स, तो कई बार आते ही रहता है। अगर सर्विस में सफलता की विशेषता क्या है? वेस्ट होना नहीं चाहिए। फरमान बरदार का अर्थ है फरमान पर चलना, मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो। अगर इस फरमान पर नहीं चलते तो क्या होता है? जितना जितना इस फरमान को प्रैक्टिकल में लाएंगे उतना ही प्रत्यक्ष फल मिलेगा। सेकंड और संकल्प भी बिना सर्विस के ना जाए, हर सेकंड सर्विस के प्रति हो, चाहे अपनी सर्विस चाहे दूसरों की सर्विस। तो सर्विस में सफलता के लिए क्या? सेकंड और संकल्प, वेस्ट ना जाए, सफल हो। कुछ ना कुछ ऐसे करते, अगर जरूरी नहीं है कि हम भाषण ही करें तो सफल ये सेवा है। स्वयं की तो कुछ सेवा है ना, खुद को अपग्रेड करना, खुद में जो कमियां है उसको भरना, नई स्किल सीखते रहना, ये भी सेवा है। अपडेट कल जो बताया था, तो ये हो गया सेकंड संकल्प। फिर ए अर्थात अलर्ट, और ए अर्थात एक्यूरेट। क्या कहा बाबा ने? अलर्ट भी और एक्यूरेट, कोई भी बात में सदैव एक्यूरेट, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मना। बाबा को एक्यूरेसी बहुत पसंद है, एकदम एक्यूरेट, एक भी मार्क्स नहीं, फुल मार्क्स, 100 out of 100। एक्टिव हो अब एक्यूरेट बनो, एक्टिव तो हो अब क्या बनो? एक्यूरेट। और एक्यूरेट बनने के लिए एक ही विधि है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। I practice, दिन रात प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। कंसिस्टेंसी इज द की। कोई नई टेक्निक्स और नहीं लानी है, जो है ना उसी के साथ बस उसको प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो, तो होगा। ये जो लोकेशंस दिए, लोकेशंस पे डालते जाओ, रोज प्रैक्टिस करते जाओ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरह से उल्टा प्रैक्टिस, रिवर्स, इधर से नीचे, नीचे से ऊपर। फिर ये तीन हो गए, सेकंड संकल्प, वेस्ट, रेस्ट, बेस्ट, एक्टिव, अलर्ट, एक्यूरेसी, ये तीन। फिर आ जाओ, अभी हमने क्या कर दिया? पूरी मुरली का क्रम ही बदल दिया। हमें एक ऐसी आदत है, सीधा शुरुआत से मुरली चालू करो, फिर हम पढ़ते हैं, फिर बीच में नींद भी कर लेते हैं, फिर इधर उधर मन भटकता है, और एक बार पढ़ने के बाद तो फिर वापस पढ़ने की दिल भी नहीं होती। 6 पेज 8 पेज, बाकी भी तो कितने काम है। बहुत मुश्किल से 8 पेजेस पढ़ लिया एक दिन, तो बस अभी अगले 5-6 दिन आराम। फिर कोई दूसरा पूछे तो हम धारण कर रहे हैं, अंदर ही अंदर मनन चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट इतनी पावरफुल है, भूल जाओ ये पूरी मुरलियां होगी करके, वही फंसे रहोगे। पोर्शन भी तो पूरा करना है, कोर कंप्लीट करना है ना, कल भी था ना, जो लेट आए उनको पढ़ना पड़ेगा फास्ट। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, क्या है ये? निश्चय और नशा। कौन सा निश्चय और कौन सा नशा? नशा, अगर एक रस, एक के रस में रहोगे तो एक रस स्थिति, ये है नशा। और निश्चय कौन सा? खुद की स्थिति और सर्विस, ये दो निश्चय बताए। निशाना, निशाना क्या है? खुद की स्थिति टॉप की हो और सर्विस, ये है निशाना। और नशा कौन सा? एक रस का नशा। निश्चय, नशा और निशाना, नशा और निशाना, नशा एक रस। जितना जितना खुद नशा होगा उतना ही निशाना ठीक हो, जितना जितना खुद नशे में होंगे उतना उतना निशाना ठीक होगा। नशा और निशाना निश्चय नहीं, जितना निशाना सर्विस करने का भी निशाना और अपनी स्थिति का भी निशाना, दो बताए, सर्विस और स्थिति। निशाना अर्थात एम, एम ऑब्जेक्ट, उसके बाद है एच एच। बाबा ने पूछा है, ये बहुत अच्छा पैराग्राफ है यहां पर, कि आए कौन है बाबा से मिलने? हेड्स आए हैं, सेंटर के हेड्स, तो बाकी सब कौन है फिर? टांगे, हैंड्स, कौन है? बाबा ने कहा बाकी सब है हैंडल्स। मोटर में हैंडल बिगर काम चल ना सके। तो जो हेड है इंचार्ज, वो ये नहीं समझे कि बाकी जो है वो छोटे, और छोटे ये ना समझे कि ये हेड है और हम तो कुछ भी नहीं है, हम कौन है? हैंडल। हैंडल द्वारा ही मोटर को मोड़ सकते हैं, तो हेड्स भी इन हैंडल्स बिना सर्विस को हैंडल नहीं कर सकते। ये कितना इसमें टंग ट्विस्टर है, एच एच एच। यह जो ग्रुप है यह है हैंडल्स, इसके बिना हेड्स कुछ नहीं कर सकते। जो भी आते हैं उनको पहले पहले हैंडल करने वाले यह हैंडल है। कौन आते हैं? जो दूसरे नए वाले। तो आप लोगों के ऊपर इतनी जिम्मेवारी है, अगर आप हैंडल ठीक नहीं, अगर आप हैंडल ठीक नहीं है तो सर्विस की हैंडलिंग भी ठीक नहीं है। हैंडल, हैंडलिंग, हैंड, हैंडल। अगर आप हैंडल ठीक नहीं तो सर्विस की हैंडलिंग भी ठीक नहीं, लेकिन यह सिर्फ देखना है कि हैंडल तो है लेकिन हेड्स को कभी हैंडल नहीं करना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तुम कौन हो? एक है हेड, तुम हो हैंडल। तुमको हैंडल किसको करना है? जो नए आते हैं उनको। इस कीप्स प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हैंडलिंग। हेड, हैंडल, नए आते हैं उसको हैंडल करना है, इसको कहते हैं हैंडलिंग। पर तुम हेड्स को हैंडल मत करना। अगर आप हैंडल ठीक नहीं तो सर्विस की हैंडलिंग भी ठीक नहीं, लेकिन यह सिर्फ देखना है, हैंडल तो है लेकिन हेड्स को कभी हैंडल नहीं करना। हेड को हेड बनकर रहना है, हेड को हैंड बनकर रहना है, हैंड का इधर शायद अप डाउन हुआ है थोड़ा स्पेलिंग में, हेड को हैंड बनकर रहना है, हेड को हैंड बनकर, ऐसा है क्या लिखा है उसमें? हाथ बनकर, हेड का हैंड बनकर रहना, हाँ ये ठीक है, हेड का हैंड बनकर रहना है। तो कितने हो गए सारे मिलके? एक बार सारे प्लॉट करो अभी। एक है हेड, उनका है हैंड, उनका फिर है और एक है हैंडल, उनको करना है दूसरों को हैंडल। और ये जो हैंडलिंग है ये अच्छी होनी चाहिए, इसका एक अच्छा सा वो टंग ट्विस्टर स्टेटमेंट बनाया जा सकता है, ठीक है, एक अच्छा वाला बड़ा सा एक ही स्टेटमेंट। बाप दादा के भी राइट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड भी है, राइट हैंड को फुल पावर होती है लेकिन होती है, होती हेड है, हेड नहीं होता, हैंडल तो है ना, लेकिन कैसे हैंडल करना और कैसे बाप दादा के राइट हैंड बनना, इसके लिए यहां आए। ऐसा है, गोल 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 है पूरा। पर ये पकड़ में भी कब आएगा? जब हम उसको डिवाइड कर देंगे, पार्टीशन कर देंगे, नहीं तो कब खत्म हो रहा है। मुरली में, अव्यक्त मुरली में और साकार मुरलियों में एक ही चीज है कि कब एक टॉपिक पूरा हो रहा है और दूसरा चालू हो रहा है, इसको पकड़ लेना है हमको। ये अब पूरा हुआ, अभी दूसरा, ये अब पूरा हुआ, अब दूसरा, अब ये पूरा हुआ, अब दूसरा। अव्यक्त मुरली चालू है, अव्यक्त मुरली, फिर अभी लास्ट बचा है जहां से मुरली की शुरुआत है, वो क्या है? पीपी, प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर, तुम्हारी आंखें ही, नयन ही प्रोजेक्टर बन जाएंगे, और फिर ऐसे प्रोजेक्टर से क्या दिखेंगे? चित्र दिखेंगे। कौन से चित्र दिखेंगे? तीनों लोकों के चित्र स्पष्ट दिखाई देंगे, ठीक है। और बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर लाइट कितनी है, इसके तीन क्राइटेरिया है। आत्मा में कितनी लाइट है, उसके तीन मापदंड है। पहला, तो पुरुषार्थ का मार्ग जो है वो स्पष्ट दिखाई देगा। दूसरा, फ्यूचर स्टेटस एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। और तीसरा, दूसरों को तुम कितना समझाते हो, उनको भी वो अगर खुद उलझे होंगे तो वो भी उलझ जाएंगे। खुद ही हमको पॉइंट्स याद नहीं और हम दूसरों को याद कराएं तो हम तो कंफ्यूज है ही, सामने वाले भी कंफ्यूज, गोल 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 गोल। कुछ टीचर्स होते हैं ना, ऐसा पढ़ाते हैं कि वो खुद भी कंफ्यूज रहे और उनके स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। वो बाबा ने इसमें कितने उदाहरण दिए, एक तो बीज जैसा वैसा फल, ये भी एक उदाहरण दे दिया वहां पर, ठीक है। तो प्रोजेक्टर, तो प्रोजेक्टर में क्या क्या फायदे होंगे फिर? तो सबसे पहला तो तुमसे साक्षात्कार होगा विनाश के समय। यह लाइट रूप आपको बहुत मदद करेगा। कोई किसी भी वृत्ति वाला आपके सामने आएगा, वह इस देह को न देख आपके चमकते हुए इस बल्ब को देखेगा, तो बहुत तेज लाइट होती है उसकी, उसको जब देखते हैं तो दूसरी सारी चीजें छिप जाती है। वैसे ही जितनी जितनी आप सभी की लाइट तेज होगी, उतनी ही उन्हों को आपकी देह देखते हुए भी नहीं देखते आएंगी। जब देह को देखेंगे ही नहीं तो तमोगुणी दृष्टि और वृत्ति स्वतः ही खत्म हो जाएगी। सारा विकार, सारी माया कहाँ से आती है? जिस्म को देखने से। उस दिन क्या था मुरली में? रूह को देखो तो, रूह को देखेंगे तो राहत मिलेगी, और जिस्म को देखेंगे तो दुखी हो जाएंगे। कुछ भी नहीं मिला, शरीर को देखने से कुछ भी नहीं मिलता है। उत्तेजना होती है क्षणिक, वो भी। देह को देखने से क्या मिलता है? दुख, संताप, पश्चाताप, इच्छा, आकर्षण, मोह, पुराने संस्कारों की जागृति, शारीरिक तीव्र वेग आवेग, बस यही होता है। और वो थोड़े समय चलता है बस। हर शरीर भोग के बाद व्यक्ति पश्चाताप करता है। Every physical pleasure is followed by repentance. चाहे कितना भी हो, किस तरह का भी भोग हो, काम का भोग, भोजन का भोग, कोई भी, guilt consciousness पकड़ लेता है, वो छोड़ता नहीं है। फिर लंबा समय अंदर ही अंदर छिपा हुआ रहता है वो अपराध भाव, क्योंकि ये सब क्षणिक है, अनित्य है। आत्मा अनंत है, अनंत को अनंत की ही प्यास है बस, वो उसके सिवा संतुष्ट हो ही नहीं सकती। विनाश के समय भी, और एक चीज बताए इसमें, माया की पॉइंट है। और पावरफुल होंगे तो माया उस पावर के आगे आने का साहस नहीं करेगी। तो हमें अपनी बल्ब को पावरफुल करना है, अपनी लाइट को पावरफुल करना है। उससे साक्षात्कार होगा, उससे हमारा अपना पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होगा, दूसरे जिनको हम पुरुषार्थ करा रहे उनका भी मार्ग स्पष्ट होगा, भविष्य स्टेटस स्पष्ट होगा। ये सारी चीजें होगी, माया सामना नहीं कर सकेगी और सेफ रहेंगे हम, ठीक है। तो ये तो जस्ट शॉर्ट में बताया है, आपको इस पर काम करना है अभी। तो आज की इस अव्यक्त वाणी का क्या बनाना है? माइंड मैप। आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो माइंड मैप, अर्थात बीच में ये आएगा, ऊपर हमने ये तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स डाले, आप दूसरे पॉइंट्स डाल सकते हो। और कुछ कुछ महावाक्य होते हैं मुरली में बहुत पावरफुल, वो वैसे के वैसे उठाने होते हैं। जितनी जितनी लाइट तेज होगी उतना चित्र क्लियर। इसमें दो इंग्लिश वर्ड है, लाइट है और क्लियर है। जितनी जितनी लाइट तेज उतना पिक्चर क्लियर, चित्र क्लियर। जितना जितना प्रोजेक्टर पावरफुल होता है उतना ही दृश्य क्लियर देखने में आता है, वैसे ही तुम सभी बच्चों ने यह दिव्य नेत्र जितना जितना क्लियर अर्थात रूहानियत से संपूर्ण होंगे उतना ही तुम बच्चों के नयनों द्वारा कई चित्र देख सकेंगे। दिन प्रतिदिन सभी के मस्तक और नयन ऐसे ही सर्विस करे जैसे आपका प्रोजेक्टर शो सर्विस करता है। कोई भी सामने आएगा वह चित्र आपके नयनों से देखेंगे, नयन देखते ही बुद्धि योग द्वारा अनेक साक्षात्कार होंगे। ऐसे साक्षात मूर्त अपने को बनाना है, लेकिन साक्षात्कार मूर्त वह बन सकेंगे जो सदैव साक्षी की स्थिति में स्थित होंगे। अध्यात्म में सर्वोच्च अवस्था जो है वो है साक्षी, साक्षी की साधना, साक्षी होकर सारे खेल को देखते रहना, ये सबसे ऊंची साधना है। और ऐसा नहीं कि अंत में आएगी, धीरे धीरे इसकी रोज भी प्रैक्टिस करते रहना है। किस किस को साक्षी होकर देखेंगे, सात बातें बताओ, यहां से चालू करो अंदर से। पहला, शरीर की संवेदनाओं को साक्षी होकर देखना, सेंसेशंस पहला। दूसरा, श्वास को साक्षी होकर देखना, अपने ही श्वास को। फिर अपने विचारों को साक्षी होकर देखना। चौथा, अपनी भावनाओं को साक्षी होकर देखना। सातवां, पांचवा, अपने संस्कारों को साक्षी होकर देखना, आदतों को, अपने एक्शंस को, अपने बोल को, यह सब स्व के प्रति। फिर दूसरा साक्षी, दूसरों को साक्षी होकर देखना, दूसरे के पार्ट को। कल की मुरली में कितना अच्छा पॉइंट था, मेरी बच्ची ज्ञान में कब आएगी, कल था ना, अव्यक्तवाणी हमने लिया नहीं, वो बहुत अच्छा पैराग्राफ है। बाबा ने कितना अच्छा, सुशील भाई वो पढ़ो, शादी करा दो, मर्ज और फर्ज, ये मत सोचो कि अरे, जैसे वो धार्मिक पिता था ना, अब उसके बेटे को उसी में खुशी है 100 रुपए देने में, तुम चाहते हो कि वो 500 रुपए दे, उसका पार्ट वही है। कौन माता नहीं है जो ज्ञान में चलती है, चाहती है कि मेरी बेटी भी ब्रह्मा कुमारी बने, संदली पर बैठ के और मुरली चलाए। पर बहन क्या, बेटी क्या कर रही है, उसे इंतजार है अपने सपनों के सौदागर का, अब क्या कर सकते, क्या है वो पढ़ो, ये ले लो, इधर आ जाओ, ये बहुत अच्छा है सबके लिए, बहुत पावरफुल है। बाबा ने एकदम प्रैक्टिकल आंसर दिया है, क्योंकि बच्चे ज्ञान में नहीं चलते और माँ बाप चलते चाहते वो चले, कैसे भी करके उसको ज्ञान में लाना है। हॉस्पिटल में एक बहुत पहले की बात है, एक माँ बाप थे, उनके बेटा ज्ञान में नहीं चलता था, उसको जबरदस्ती यहाँ लेके आए, उसको इंटरेस्ट ही नहीं कुछ भी, तो वो तो रोज मार्केट से नॉनवेज लेके आके खाने लगा इधर, वो क्या कर सकते। एक शांतिवन में भाई है, उसने अपने भाई को बुलाया और जो उसको मिल रहा है वो आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा। वो भाई अगले 3 दिन शांतिवन के बाहर ही घूमता रहा, सुबह जाता था शाम को ही आता था, क्या कर सकते, जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता है किसी को। ये बहुत पावरफुल वाक्य है बाबा की।
प्रश्न है, बच्ची यदि ज्ञान में नहीं चलती है तो क्या करें, तो बाबा का आंसर है, अगर कोई इस मार्ग में नहीं चल सकते हैं तो शादी करनी ही पड़े, उनकी कमजोरी भी अपने ऊपर से मिटानी है, साक्षी हो मजबूरी भी करना होता है, बह हुआ फर्ज, लगन नहीं है फर्ज पालन करते हैं, एक होता है लगन से करना, एक होता है निमित फर्ज निभाना, सभी आत्माओं का एक ही इसमें यह जन्म सिद्ध अधिकार लेने का पार्ट नहीं,
ये लिख के रखना है अपने पास, सभी आत्माओं का
एक ही समय
ये जन्म सिद्ध अधिकार लेने का पार्ट नहीं है।
परिचय मिलना तो जरूर है, पहचानना भी है, लेकिन कोई का पार्ट अभी है, कोई का पीछे।
हो सकता है हम चाहते कोई कुमार ज्ञान में आ जाए पर उसको पार्ट ही नहीं है, हो सकता है वो अपने पूरे परिवार को ज्ञान में लेके आएगा बच्चों सहित फ्यूचर में चतुर्भुज बनने के बाद उसका जो बेटा है वो उसे ज्ञान में लाने वाला है, और तुम चाहते हो वो पहले आ जाए, कैसे हो सकता है,
तो फिर लास्ट आएगा फास्ट चला जाएगा बीजों में से कोई जट फल देता है, कोई देरी से फल देता है,
कोई बीज जट फल देंगे, कोई देरी से फल देंगे।
वैसे ही यहाँ भी हर एक का अपने समय पर पार्ट है, फर्ज समझ करेंगे तो माया का मर्ज नहीं लगेगा, नहीं तो वायुमंडल का असर लग सकता है, इसलिए फर्ज समझ करना है। फर्ज और मर्ज में सिर्फ एक बिंदी का फर्क है, लेकिन बिंदी रूप में ना होने कारण फर्ज भी मर्ज हो जाता है। जो मददगार हैं उनको मदद तो सदैव मिलती है, बाप की मदद हर कार्य में कैसे मिलती है।
बस ये देखो टॉपिक चेंज हो गया है, टॉपिक चेंज, वो वहां पर ही पूरा हुआ है स्टॉप, और फिर वहां से कब बाबा ये जो ट्रांजिशन है ना एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में कब उतर जाता है सामने वाले को भी पता नहीं चलता,
कोई भरोसा नहीं बाबा
उसके इतने टॉपिक्स है। इधर एक मंदिर है लहरी बाबा का मंदिर, शिव बाबा का एक मंदिर लहरी बाबा, ये लहरी बाबा ही है उसकी ऐसी ऐसी लहरें चलती है, कब कहां टॉपिक बदल देगा एक, और वो टॉपिक एकदम भिन्न, और बीच का जो ट्रांजिशन फेज है ना इतना स्मूथ है कि पता ही नहीं चलता है सामने वाले को कि टॉपिक कब बदल गया अच्छा ऑप्शन
अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा, मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा, भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा करना दोबारा। ओ मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा, शिव हमें घर ले जाने आए, हमें घर ले जाने को आए, चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया, गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया, संगम युग बनाया, ये मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा।